Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
परंतु जब धीरे धीरे वो कहता है ये बेकार है, अपने को जरा कुछ पद में होना चाहिए, फिर महंत बन गया, ये भी आरोप है ना, आरोप कर लिया महंत का। फिर कहता ये भी पुराना हो गया, अब मंडलेश्वर बन जाओ, दूसरा आरोप हो गया। धीरे धीरे कहता है कि बहुत सारे मंडलेश्वर बन गए, अपने को आचार्य मंडलेश्वर होना है। फिर पैसा बहुत खर्च करके आचार्य मंडलेश्वर हो गया। फिर कहता आचार्य मंडलेश्वर भी रस नहीं, अब वरिष्ठ आचार्य मंडलेश्वर हो जाना चाहिए। कितना पूंछ लग गया, वो पूंछ लगते लगते बहुत लंबा हो जाता है। ये तो बताया मैं इधर का, ऐसे गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम में ज्यादा पूंछ है, वो वहीं से नकल हुआ इधर जो है। वैसे देखा जाए ना, कहावत है संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष गुण होते हैं। एक बड़े अच्छे विरक्त महात्मा, स्मृति दो बार आ गई, विरक्त स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उन सब ने बहुत कुछ पढ़ा, द्वैत सिद्धि चित्त सुखी। स्वामी रामानंद जी महाराज के अनन्य मित्र थे, तो कहते थे बार बार, बड़े उद्भट विद्वान, कि साधु में विद्वान और अविद्वान का भेद किस बात का। साधु मतलब साधु, सब एक जैसे, सब सज्जन, सब भगवान के भक्त, उसमें क्या भेद करना कि विद्वान है जिसको बड़ा आसन, बड़ा दक्षिणा, बड़ी पूजा, और या विद्वान है, ये नहीं होना चाहिए, वो करते भी नहीं थे। तो ये उधर हवा उड़ के आ गई आरोप प्रत्यारोप का। तो आरोप धीरे धीरे पुराना होता, गृहस्थाश्रम में देख लो, पहले तो बेचारा बड़े आनंद से था बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी नहीं, दोनों, ऐसा नहीं समझना है कि आप लोग नहीं, क्योंकि अभी नवरात्रि है ना, उसमें आता प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी में आपका दूसरा नंबर, दूसरा स्थान, प्रथम शैलपुत्री। तो पहले तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी का हो गया आरोप, इसके बाद फिर जो है आरोप हो गया अब शादी विवाह होने के बापति पत्नी का, स्वामी स्वामिनी का आरोप हो गया, उसमें भी संतोष नहीं। थोड़े दिन में फिर पुत्र नहीं हुआ तो परेशान, हजारों लाखों रुपया डॉक्टर के पास फूकते हैं, जैसे ही पुत्र होना चाहिए। फिर माता पिता बन गए, माता पिता होने के बाद भी संतोष नहीं, क्योंकि अपना साथी मित्र बन गया दादा परदादा, पता देव को हमारे पोते पर पोते। फिर आरोप क्या हो गया, पितामह पितामही। तो ये तो हमने जन्म का आरोप कर दिया, फिर क्रिया का, गुण का, कला का, ये सारा जो आरोप है ये आत्मा के ऊपर है। अच्छा, आत्मा निकल जाए, जो चित ज्योति है अंदर वो निकल जाए, फिर क्या आरोप करेंगे, मिट्टी का ढेर। अब बोलो कि हमारी दादी हमारी मामी ताई, या बोलो हमारे मामा ताता चाचा काका, कुछ नहीं, सब खलास एक क्षण में। तो सब कुछ आत्मा पर अध्यारोपित हो रहा, परंतु जिस पर अध्यारोपित हो रहा उसको हम लोग भूल जाते। वो भूलने की चीज नहीं, उसके भूलने से सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, गड़बड़ जाला हो रहा। तो आरोप आपने तो कर लिया, अब आरोप किया स्वतंत्र करता, करने में स्वतंत्र हैं पर भोगने में स्वतंत्र नहीं। तो आपने आरोप किया तो फल भोगने के लिए तैयार, अब क्या होगा उसको बता रहे 11 श्लोक में। केन तरहि असौ शरीराणि आदत्ति त्याह, फिर आरोप करने से किस कारण से शरीरों को ग्रहण करता है, उच्चारण कर लें, संकल्पं स्पर्शं दृष्टि मोहैर ग्रासाम्बुवृष्ट्या चात्मविवृद्धि जन्मः कर्मानुगान्यानुक्रमेण देहि स्थाने स्वरूपाण्यभिसंप्रपद्यन्ते संकल्पन। सबसे पहले गड़बड़ी से शुरुआत संकल्पन। संकल्प नौ तो सब बढ़िया है। संकल्प का सामान्य अर्थ हम क्या करते हैं कि किसी विषय का संकल्प करना या अहम आना सकल निवृत्ति अर्थम अमुक कामना प्राप्ति अर्थम धनादि प्राप्ति अर्थम अमुक कर्म करी से संकल्प करते ना। पर संकल्प का बड़ा भारी अर्थ है। संकल्प मतलब कि सम्यक प्रकार से पहले कल्पना होती है। जब तक सम्यक की कल्पना न हो तब तक संकल्प नहीं बनेगा। मुंबई में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ लोग होंगे। अब उन लोगों की सम्यक कल्पना सत्संग स्वाध्याय में है ही नहीं, तो उन्हें सुनने को नसीब नहीं होता। मूसलाधार वर्षा हो रही, आपको भयंकर गर्मी लग रही, आप प्यासे हैं, पर मूसलाधार वर्षा में यदि आपको शीतलता चाहिए तो छाता को तो हटाना पड़ेगा, ऊपर से कोट पतलून जैकेट पहने और छाता लगा लिए और चिल्ला रहे कि भाई जोर से गर्मी प्यास लगी, कंठ सूखा जा रहा, मुझे कोई पानी दे दो, तो पानी कहां से मिलेगा। छाता हटाएंगे जब कोट जैकेट निकालेंगे अपने आप वर्षा का लाभ होगा। ऐसे ही हम लोग जो है ना इतना जो है ना अपने अंतःकरण को कोट जैकेट छाता से आवृत कर दिए कि ज्ञानामृत की मूसलाधार वर्षा हो रही सभी जगह, ज्ञानामृत की मूसलाधार वर्षा हो रही, पर जो हमारा अंतःकरण है उसमें इतना आवरण आ गया, छाता जैसे ओढ़ ले तो वैसे ओढ़ लिया, जो बाहर बाहर वो तो होती है। हाँ वो भी मुझे करना था, मुझे मालूम था कोई पूछेंगे। सम्यक बोलते अच्छी तरह से, मतलब होता है व्याख्यान करना, पर थोड़ा अपने धैर्य कम रखा इसलिए जल्दी बोलना पड़ा। सम्यक बोलते अच्छी तरह से, ये दृष्टांत उसी के लिए दिया था। जो तो मुंबई में हजारों लोग हैं उनको सत्संग स्वाध्याय में सम्यक मल्ल की अच्छी चीज है, बढ़िया है, पसंदीदा है, यह भावना नहीं हुई। सम्यक बोलते अच्छा को, जिस चीज में या गुण क्रिया में पदार्थ में वस्तु में सम्यक की भावना होती उसी की हम कल्पना करते, जिसमें सम्यक की भावना ने उससे उदास हो जाते और जिसमें असम्यक की भावना उससे हम घृणा नफरत करते। तीन होता है ना, या तो अच्छी भावना होगी या उदासीन भावना होगी या नफरत की घृणा की भावना। तो जहां पर असम्यक बुद्धि होगी, अच्छी मतलब कि सुंदर है, अच्छा है, मुझे पसंद है, बढ़िया है, वहां आप कल्पना शुरू कर देंगे और इतना कल्पना होगा कि बस उसका अंत ही नहीं। और जहां असम्यक है उससे घृणा नफरत होगा, दूरी बनाएंगे, और जहां कोई भावना नहीं वहां उदासीन। तो सबसे पहले भूल हमारी क्या हुई कि हमने शरीर में सम्यक्त्व की भावना मतलब कल्पना कर ली, तो सम्यक्त्व की कल्पना करने से संकल्प हो गया। मन में क्या संकल्प हो गया कि हमें मुंबई में एक मकान चाहिए चाहिए, क्योंकि मुंबई बड़ी अच्छी है, ले हो गया यहीं से गड़बड़ झाला, ये संकल्प हो गया। इसके बाद में संकल्प के बाद दूसरा संकल्प हुआ कि अब मकान हो गया, अब अच्छा कोई धंधा होना चाहिए, वो भी हो गया। इसके बाद में अब हुआ कि भाई अकेले ठीक नहीं, कोई न कोई रोटी गरम गरम रोटी खिलाने वाली चाहिए। हो गया ना तीसरी भावना, ये चलता रहता जीवन भर। तो सम्यक मतलब कि अच्छा। भगवान राम जब वनवास थे उस समय सारे ऋषियों महर्षियों ने देखा, सिद्धों ज्ञानियों ने, कि राम जी बड़े मजे से मस्त हैं। सीता जी कंद मूल धो धा करके अपना सुखा करके कूट पीस करके पका करके थाल लगा कर रख दी देती कि लीजिए प्रभु आरोगी। ऋषियों ने कहा कि हम लोग बचपन से जवानी बुढ़ापा आ गया, सहमी कंदमूल लेने जाओ, सहमी कंदमूल लेकर के आओ, उसको धो छानो पीसो बनाओ, कितनी मुसीबत। इससे बढ़िया कि हम लोग एक एक सीता तैयार कर लें। बस सबने आपातकालीन बैठक हुई तो संकल्प कैसी हुआ, सम्यक भावना हुई कि बड़ी अच्छी बात है कि सीता जी बढ़िया से बनाकर थाल रख देती, कुछ करना नहीं धरना नहीं, वैसे हम लोग भी एक सीता बना ले। सबने सोचा कि इतनी सीता कहां से आएगी। एक ऋषि ने कहा कि ऐसा है, हम तपस्या से सभी पत्थरों में पाषाण संचार कर देंगे, तुम लोग अपने लिए बढ़िया बढ़िया सीता तैयार करो। अब जिसको मोटा चाहिए मोटा पत्थर लेके घिसना पिटना शुरू कर दिया, जिसको लंबी चौड़ी चाहिए खूब लंबा चौड़ा पत्थर लेके छिनी थोड़ी से काटना पिटना शुरू कर दिया, भजन ध्यान छोड़ के सब उसी में लग गए। राम जी ने सोचा कि बेचारे तपस्या के लिए आए थे, इनको एक संकल्प हो गया। और संकल्प कैसे हुआ, सम्यक भावना से, सम्यक कल्पना से, कि कितनी अच्छी बात है कि राम जी को बैठे बैठे मिल जाता। ऐसी भावना हुई फिर संकल्प हो गया। बस इतने में राम जी तो बेचारे गए जंगल में, उधर आया रावण सीता जी को ले गया। अब राम जी हा सीते पुकारने लगे, रोने लगे जोर से। सभी ऋषियों ने कहा भाई देखो कौन रो रहा। मालूम पड़ा कि राम जी रो रहे। क्यों रो रहे, तो बोले सीता का हरण हो गया। सबने आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि सीता चोरी होती है, अपने को यही ठीक है, अपने को ये थोड़ा तकलीफ थी। देखो पहले सम्यक की कल्पना हुई, मतलब बढ़िया पने की, अच्छा पने की, तो भजन ध्यान छोड़ के पत्थर में लग गए घिसने पीटने। अब सीता कारण हुआ तो असम्यक कल्पना हो गया कि अच्छी बात नहीं है, ये खतरा है, इसीलिए अपने को ऐसे ठीक है, सीता गीता नहीं चाहिए। हो गया ना। तो हमारे जीवन में ऐसे होता है, हर चीज में पहले सम्यक कल्पना करते, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है। शिवरात्रि में एक वो जो है ना कलकत्ते से बड़े अच्छे घराने के व्यक्ति आए, उन्होंने देखा महात्मा लोग तो बड़े मजे से भंडारा खाते, सबका अलग अलग बढ़िया कमरा स्वस्थ, अपने जो है दिन भर व्यापार करो, फिर पत्नी की सुनो बच्चों की सुनो, बस तुरंत वैराग्य हो गया। अच्छा शिवरात्रि के दिनों में ऐसा कुछ माहौल भी रहता है, हवा भी, कि नहीं लेने वाला भी संन्यास लेने को आतुर हो जाता है, ऐसा एक माहौल बन जाता है स्वाभाविक। अब वो झटपट संन्यास ले लिए। अब संन्यास के बाद दो महीने के बाद सब चले गए, खाली हो गया। तो जब देखे कि यहां तो बस 24 घंटा घंटी बजती है, 4 बजे उठो, फिर 5 बजे आरती में जाओ, भाष्य पारायण करो, फिर रुद्री पाठ, फिर स्वाध्याय, फुर्सत ही नहीं। बोले किससे बढ़िया तो घर में ही था, आराम से सोने को तो मिलता था। दोबारा चलते बने तो देखो पहले उनको देखकर माहौल सम्यक की कल्पना हुई कि बहुत बढ़िया जीवन है, क्या सुंदर स्वस्थ जीवन है, निश्चिंत जीवन है, मजा है। जब सम्यक कल्पना हुई संन्यास में प्रवृत्ति हो गई। अब दोबारा उन्हें असम्यक कल्पना हुई, इसमें तो बहुत पाबंदी है, बहुत नियम है ना, सोने को भी नहीं मिलता, चयन नहीं है। अब असम्यक कल्पना से संकल्प हुआ कि चलो वही ठीक है, कल चले गए। तो हमारे जीवन में हमेशा यही होता है, सबसे पहले सम्यक कल्पना, अच्छापने की कल्पना, कल्पना होने के बाद संकल्प होगा। अब संकल्प के बाद तो बुद्धि निश्चय करती है, निश्चय के बाद अहंकार होता है, अहंकार के बाद चित्त उसको प्रकाशित कर देता है, तब जाकर क्रिया संपादन होता है। इसलिए यहां लिख रहे संकल्पन, सबसे पहले संकल्प हुआ, इसके बाद स्पर्शन, अब विषय की सेवन की इच्छा हो गई, फिर दृष्टि देखा, इसके बाद मोह, ये चार है ना, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह, मोहिक, ये मोहई तृतीया है, मोहई है ना, मोहई ग्रासांब वृष्टिया, ये दृष्टांत है। ग्रास मतलब कि अन्न, अंबु मतलब जल, तो अन्न जल का दृष्टांत दिया। जिस प्रकार अन्न जल की जब वृष्टि हो, यहां जो वृष्टिया लिखा ना, वृष्टि का तो वर्षा होता है, और यहां वृष्टि का तो वर्षा नहीं, लक्षणा करना वृष्टि शब्द का, कि जिसके जीवन में भरपूर अन्न जल की वर्षा हो, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसका जीवन फलता फूलता बढ़ता है, इस अर्थ में है। तो अन्न जल की वृष्टिया मल्ल की प्रचुर मात्रा से उपलब्धि होने से आत्मविवृद्धि, शरीर परिवार कुटुंब सब बढ़ता है, फलता फूलता। बी लगा दिए ना, बी मतलब विविध प्रकार से, वृद्धि मतलब बढ़ना, अनेक तरह से बढ़ता है। जब हमारे जीवन में खूब मूसलाधार अन्न और जल की वर्षा, अन्न शब्द का अर्थ होता है धन आदि सब कुछ, अन्न शब्द वाचक है, उपलक्षक है, धन धान सोना चांदी सब कुछ का, अन्न और जल की खूब जब वर्षा हो, तो आत्मा शरीर और बंधु बांधव मित्र कुटुंब अपने आप बढ़ जाते, रोड पर चलने वाला ही मित्र बन जाता है फिर तो, हाँ कि क्या पता दो चार छींटे अपने को मिल जाएंगे। आत्मविवृद्धि, जन्म, जन्म आगे सन्व है, जन्म कर्मानुगानी अनुक्रमेण देही, ये दृष्टांत दिया। ऐसे ही संकल्पन दृष्टि स्पर्शन मोह के द्वारा ये जो कर्म है, इन कर्मों से अनुगानी, इनका जो अनुसरण करता है, अनुसरण करने से क्रम पूर्वक देव जीवात्मा स्थानेशु मल्ल अनेक योनियों में रूपानी मल्ल की शरीरों को अभिसम प्रपद्यते, शरीरों को प्राप्त करता है। सबसे पहले संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद स्पर्श करना चाहता, फिर देखना चाहता, फिर मन में मोह हो गया, मोह मतलब कि बार बार किसी चीज की स्मृति होने का नाम हो, जिस विषय में महत्व बुद्धि होती है, महत्व मतलब सम्यक अच्छापना, बहुत अच्छा है, सुंदर है, पसंद है, बढ़िया है, ये मेरे अनुकूल है, यह बुद्धि होने के बाद फिर आप निश्चय कर लेते हैं, निश्चय करके उसको पाना चाहते, देखना चाहते, पाए देखे, इसके बाद में अब चित्त में मोह हो गया, मोह मतलब कि पुनर पुनर प्राप्ति की इच्छा का ना मोह है, पौना पुण्येन वस्तु प्राप्त इच्छा मोह, किसी चीज को बार बार उसको पाने की जो इच्छा विशेष है, इसी को मोह कहते हैं। मोह वही होती है जहां पर मतलब कि सम्यक कल्पना हो, सम्यक है नहीं पर अच्छापने की कल्पना हो रही, सम्यक तो केवल एक आत्मा ही है, तो सम्यक कल्पना करने से मोह हो गया। इसलिए आप लोग ऐसा भूल नहीं करना, जो चीज जैसी उसको वैसा ही समझना, फिर तो बहुत मजा आएगा, बहुत मस्त रहेंगे, कोई चिंता नहीं। और जहां संकल्प हो गया, सम्यक कल्पना हो गया, अब आपने किसी पत्थर को, पाषाण है, उसको आपने कल्पना कर लिया। कल्पना क्या कर लिया? भूत की कल्पना कि भूत है। अब भूत की कल्पना हुई नहीं कि भय खड़ा था तो पत्थर, उसका कोई गलती नहीं। अब उसी पत्थर को किसी ने कल्पना किया कि साक्षात ये शंकर भगवान है, क्योंकि अष्टमूर्ति में ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चांद, अग्नि, पांच आठवां आत्मा है, सूर्य, चांद और आत्मा, ये आठ मूर्तियां हैं। तो आपने समझा कि अभी साक्षात शिव है, तो इस कल्पना से मन में आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, कल्याण होगा। और भूत की कल्पना कर लिया तो फिर भय, पीड़ा, आतंकित होंगे। नामदेव जी की जीवनी में आता है कि नामदेव जी अभंग रात को सभी बैठ के कर रहे थे, कहीं जोर से प्यास लगी तो लोगों ने कहा भाई पानी लाओ। सबने कहा कि रात को कुएं में भूत रहता, हम तो नहीं जाते। अंत में लोगों ने कहा कि नामदेव जी आप बड़े भक्त हैं, ज्ञानी, आप ही कोई उपाय कर सकते। बोले अच्छी बात है। नामदेव जी घड़ा उठाए और कुआ में जैसे भरने लगे, बस भूत आ गया। जब भूत आ गया तो भूत को देख कर वो डरे नहीं, बल्कि वहां भी जय जय लंबक नारायण, जय जय लंबक नारायण, गगन अंबर रूप छाए, जब ऐसा बोलने लगे भगवान प्रकट हो गए। बोले तू मुझे पहचान लिया? नामदेव जी ने कहा कि तुम कहां नहीं हो बताओ, भूत में भी तो आप ही हो ना। देखो भूत में भगवान की भावना से भूत भी भग गया, भगवान का दर्शन। तो भावना करना है तो सभी जगह भगवान की, पर हम लोग भावना करते भूत का। भूत मतलब पंचभूत। भूत एक भूत तो होता डराने वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं कि वो हवा लगना बोलते हैं, वो है। और यहाँ भूत मतलब पंचभूत, जहां भी हाल मा चाम पंचभूत की भावना करके फिर उससे राग, द्वेष, मोह की दृष्टि हो जाती, फिर इससे क्या होता है कि अनेक प्रकार के योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए अब आगे से ऐसा भूल नहीं करने का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति।